समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, नमस्कार। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned sine die today. Parliament passes promotion and regulation of online gaming bill 2025.
विपक्षी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्रों की कल जांच होगी।
External affairs minister Dr. S. Jaishankar holds talks with his Russian counterpart Sergey Lavrov in Russia. Dr. Jaishankar says meeting is an occasion to discuss political relationship and review bilateral ties. And also, Russia launches one of its biggest drone and missile attacks of this year at Ukraine overnight.
गुजरात में मूसलाधार वर्षा से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल झील में प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव आज शुरू होगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the promotion and regulation of Online Gaming Bill 2025. Well, the online gaming sector has emerged as one of the fastest growing components of the creative economy, contributing significantly to innovation, employment generation and export earnings. India possesses a large pool of skilled young professionals, strong technological capabilities, and a rapidly growing domestic market, which together provide an opportunity for the country to assume a leadership role in the global value chain of online gaming.
जी हाँ, वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में कई खंड शामिल हैं। इनमें स्पोर्ट्स, कैजुअल गेम्स सहित ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स शामिल हैं। इस क्षेत्र में किसी समर्पित संस्थागत व्यवस्था के बिना ये संचालित होता है, इसलिए नीति निर्माण, हितधारकों की सहभागिता और पारदर्शी तथा सुसंगत तरीके से इस क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
The unchecked and widespread proliferation of online money games has led to grave social, economic and psychological consequences across the country, and these platforms often promote compulsive and addictive behavior, resulting in financial ruin, mental health disorders and increasing incidents of fraud and exploitation.
बिल्कुल अभिषेक, विदेशों से संचालित होने वाले ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदाताओं की बहुतायत अक्सर देश के नियमों को दरकिनार कर देती है, कराधान से बचती है और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां पैदा करती है। इससे उपयोगकर्ता सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, सीमा पार संचालन और अंतर्राज्यीय नियामक विसंगतियों से संबंधित जटिल चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। चूंकि गेमिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, कुछ शिक्षाप्रद हो सकते हैं और कुछ सट्टेबाजी एप्स हानिकारक भी हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन गेम्स के विभिन्न रूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और वर्गीकृत करना और उद्योग के प्रत्येक उपक्षेत्र को उचित रूप से नियंत्रित करने के लिए एक अनुकूलित कानूनी ढांचा प्रदान करना जरूरी है।
So hence, listeners, there's a need to clearly delineate and categorize the different types of online games that have been offered, and also to ensure that an appropriate enabling and legal framework is created to address the issues and concerns of each of the subsectors of online gaming. And accordingly, the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 proposes to establish a robust legal framework, not only prohibit online money gaming in the country, but also to regulate, promote and encourage the sector for innovation and economic growth and ensure a developed, safe and responsible डिजिटल इन्वायरमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स।
जी हाँ, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज मंजूरी दी। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें क्षेत्र की समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है।
The bill has a provision of complete ban on offering, operating and facilitating online money games, and there is a provision of imprisonment of up to 3 years and a fine of up to 1 crore rupees of both in case of violation of the law related to online money gaming. And moving the bill, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav said, online money gaming has become a public health menace. He said several families have faced financial distress due to online money gaming. The minister highlighted that online money gaming posed a serious concern in the society as it creates addiction, leading to financial frauds and cheating. He said an estimated 45 crore people lose around 20,000 crore rupees every year in the online games. And Mr. Vaishnav highlighted that the bill has 3 segments, namely e-sports, online social games and online money games. And he said government will promote e-sports and online social gaming.
ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय है जो एक डिजिटल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सेक्टर बनके उभरा है। उपसभापति महोदय, इसके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें एक टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा।
तो अभिषेक, इस ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में श्रोताओं को जानकारी दे दी जाए। ई स्पोर्ट्स शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और विनियमित करना इसमें शामिल है।
एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ द सेक्टर, टू प्रोहिबिट द ऑफरिंग, ऑपरेशन, फैसिलिटेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन मनी गेम्स through any computer resource, mobile device or the internet, particularly where such activities operate across state borders or from foreign jurisdictions.
व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं और कमजोर आबादी को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारान उपयोग सुनिश्चित करना है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी इस विधेयक का उद्देश्य है।
एंड ऑल्सो टू सेफगार्ड द इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड द सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म नेशनल लेवल लीगल फ्रेमवर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट।
बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने और गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए है।
यस मुकेश, एंड वी आर हियर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, स्पेशली अमंग द यूथ, येट डेंजरसली ओवरलुक्ड, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग एप्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इवन रिस्कियर, ऑनलाइन बैटिंग एप्स। And betting apps may promote themselves as skill-based or fun ways to learn, but make no mistake, this is gambling, and gambling can destroy lives. People start small, thinking they'll make a little extra cash, but soon they're borrowing money, losing savings, and even falling into debt, all because of a game that was never in their favor.
और सट्टेबाजी एप्स अक्सर युवा उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं और तेजी से पैसा कमाने के लालच को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अंत में वे कर्ज में डूब जाते हैं और इससे लोगों के जीवन पर कई तरह के नकारात्मक मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी सीधे तौर पर चिंता, अवसाद और यहां तक कि चरम मामलों में आत्महत्या के विचारों से जुड़ी है। ये सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं, ये परिवारों, रिश्तों और भविष्य को प्रभावित करता है। व्यक्ति के अलावा ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रसार का परिवारों, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में इन प्लेटफॉर्म्स को धन शोधन, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों तथा आतंकी संगठनों के लिए संदेश वाहक के रूप में उपयोग जैसी अवैध गतिविधियों से जोड़ा गया है, जिससे राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता प्रभावित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के डीन अनुसंधान और परामर्शकर्ता डॉक्टर रोहित मेहरा ने सरकार के इस प्रयास का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी हानिकारक धन आधारित गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाकर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना है और साथ ही युवाओं को नए कौशल सीखने के लिए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के और अवसर भी पैदा होंगे।
इस बिल के प्रावधान के अंदर जो लोग हैं उसमें दो तरह के गवर्नमेंट ने इश्यूज दिए हैं, जिसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑनलाइन और सोशल ई गेमिंग्स को प्रमोट करेगी, जहां पे हमारे जो यंग टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व लोग हैं, वो गेमिंग की डेवलपमेंट के लिए ऊपर काम करेंगे और उनके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी जॉब सेक्टर में। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने वो गेम्स जहां पे ऑनलाइन गेमिंग में कुछ पैसा लोग लगाते थे और उस पैसे के साथ जो हमारा समाज है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम महसूस कर रहा था, उसके ऊपर एक चेक रखने के लिए प्रावधान किए हैं।
Yes, and so to conclude our discussion on the promotion and regulation of online gaming bill 2025, and as we have seen, listeners, online gambling can have serious consequences from financial ruin to mental health issues and strained relationships. The convenience of gambling at our fingertips makes it even more dangerous, especially for vulnerable individuals. But there is hope. With stronger regulations, increased public awareness and support systems for those affected, we can reduce the harm caused by online gambling.
बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से हम पर यह भी निर्भर करता है कि हम जोखिमों को पहचानें, सीमाएं निर्धारित करें और आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी लें। आइए एक समाज और एक व्यक्ति के रूप में मिलकर काम करें ताकि जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके और खुद को और अपने प्रियजनों को ऑनलाइन जुए के छिपे खतरों से बचाया जा सके। आइए मिलकर एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जहां मानसिक स्वास्थ्य आभासी पुरस्कारों से अधिक मूल्यवान हो और वास्तविक जीवन उच्च स्कोर से ज्यादा मायने रखता हो। और श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या खास है। तो इस क्रम में सबसे पहले अभिषेक छत्तीसगढ़ चलते हैं।
Absolutely.
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। सौर सुजला योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करना है। किसानों को रियायती दरों पर सिंचाई पंप उपलब्ध कराकर किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2016 को ये योजना शुरू की गई थी। तो पेश है रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम तिलोरा के किसान जगदीश कुमार पावले प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ की मिसाल हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे केवल एक फसल ले पाते थे, लेकिन अब रबी और खरीफ दोनों सीजन में फसल ले रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है।
मैं सरकार से आवेदन लगाया सुजला योजना से, तो मेरे को सरकार ने पूरा दिए। इसमें मेरा 10,000 पैसा लगा है और बाकी सरकार का पूरा है। पानी की व्यवस्था होने से मेरे पास कुआं स्वयं का खुदाया हूं मैं। पानी की व्यवस्था लगने से पूरा मेरा हरा भरा रहता है, तो मतलब दोनों फसल लेता हूं मैं।
किसान जगदीश कुमार पावले ने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई पंप मिलने से अब उन्हें पानी की कमी से नहीं जूझना पड़ता। इससे खेती की लागत कम हुई है और उत्पादन भी बढ़ा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
और अभिषेक, अब श्रोताओं को छत्तीसगढ़ से ले चलते हैं ओडिशा।
ओडिशा इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ मोज़ाइक ऑफ कल्चर्स विद एवरी रिदम रिचुअल एंड ट्रेडिशन स्पीक्स ऑफ अ यूनिक कनेक्शन बिटवीन पीपल नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज ऑफ ट्राइबल एंड फोक डांसेस द स्टेट एम्बॉडीज अ लिविंग आर्काइव ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स। वी हैव अ रिपोर्ट।
Each dance is more than just an artistic expression. It is a language of the community, a reflection of their worldview and a means of sustaining cultural memory across generations. From the vigorous beats of Dalkhai to the lyrical grace of Rasalkeli, these forms are woven into the everyday lives of the communities, marking festivals, harvests, and sacred occasions. Among these, the people of Kalahandi district have preserved an ancient gem, the Madli dance of the Gondar tribe. A researcher in this field, Ms. Sushri Shivalakshmi Behra, offers the following insights.
Madli dance form is named after its main musical instrument, Madli. Unlike many dances that celebrate romance or beauty, Madli is deeply spiritual, rooted in the soil, the season, and the cycle of farming life. It is more than performance. It is prayer in the motion and offering to deities like Budhadev and Vishnu, asking for good harvest and expressing gratitude for nature's abundance. Performed at the beginning of cultivation in Vaisakha and again at the completion of the harvest on Magasira Punyama, Madli embodies the rhythm of agriculture and the intimate bond between human and the land. Festivals such as Nuakhai, Chaul Dhua, Choit Parab and Pushpuni became vibrant stages where 16 to 25 male artists gather, their voices echoing in God Adivasi and Kalahandiya dialect, accompanied by the resonant beat of the Madli.
It is not merely a tribal performance but a cultural practice that preserves ecological wisdom, reinforces community bonding and nurtures respect for the land. For Parikrama, Supriti Mishra from Akashvani Sambalpur.
और ओडिशा से अभिषेक अपने श्रोताओं को ले चलते हैं त्रिपुरा.
Yes, Agnivir is not just a term but a spirit, a burning zeal among the youth of India to dedicate themselves to the service of the nation. And under the Agnipath scheme, young aspirants undergo 6 months of rigorous training before being deployed with the Indian Armed Forces for 4 years. We have a report.
Since its launch in 2022, the scheme has opened new avenues for youth in Tripura, where the Indian Army has been conducting Agnivir recruitment rallies every year. In Tripura this year, the rally began on August 20th at Swami Vivekananda Ground in Agartala and will continue until August 23rd. The event has been organized by the Army's Silchar Recruitment Office. Colonel Rakesh Dogra, director of the Silchar Recruitment Office, informed that candidates from all 8 districts of Tripura who cleared the online common entrance examination are participating in the rally. He added that number of participants has doubled this year compared to last year. Around 3,500 candidates appeared for the online exam, out of which over 700 youth from Tripura have been shortlisted.
जो अच्छे बच्चे तेज हैं रनिंग में और फिट हैं वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं अभी और हर साल एक रिक्रूटमेंट रैली त्रिपुरा में किया जाता है. अभी जो नया अग्निपथ स्कीम है इसके तहत 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने इनका ट्रेनिंग होता है और 4 साल कंप्लीट करने के बाद में उसमें से 25% कैंडिडेट्स को परमानेंट किया जाता है और बाकी दूसरी सर्विसेज में जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में वो बच्चे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनको काफी अच्छा पैकेज तकरीबन 30 लाख तक का पैकेज मिलता है अग्निवीर को और काफी अच्छी स्कीम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफी पब्लिसिटी किया है और हम देख रहे हैं कि बहुत पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2 गुना रजिस्ट्रेशन इस पर हुआ है और कैंडिडेट्स की संख्या काफी बड़ी है.
ऑन द मॉर्निंग ऑफ ऑगस्ट 20th द रैली स्टार्टेड विद अ 1.6 किलोमीटर रनिंग टेस्ट, पार्ट ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल टेस्ट दैट विल determine the final selection list. Eligible candidates are in the age group of 17.5 to 21 years. For many youth of Tripura, this rally is more than a recruitment process. It is a chance to fulfill a dream of donning the uniform, serving the nation and securing a future built on discipline, skills and pride.
हमारा नाम है हृदय विश्वास. हम बिलोनिया का दक्षिण सोनाचरी में रहता हूँ. तो हम अग्निवीर का चूज किया इसलिए हम देश के जाने के बाद देश में अच्छा कुछ करने के लिए मैं सेना में जाना चाहता हूँ और उसलिए हम अग्निवीर का चूज किया.
कुणाल शिंदे फॉर परिक्रमा फ्रॉम आकाशवाणी न्यूज अगरतला.
और अपने श्रोताओं को बता दें कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली के वसंत कुंज में कुंज भवन नामक शिल्प परिसर का उद्घाटन किया है. इस मौके पर वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी उपस्थित थे. तो सुनते हैं रिपोर्ट.
शिल्प परिसर वस्त्र मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसकी परिकल्पना एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और खुदरा गंतव्य के रूप में की गई है. कपड़ा मंत्री ने कहा कि इस भवन का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना है. उन्होंने कहा कि इस पहल से कारीगरों को गांव से लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा.
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा कुंज भवन का नाम रखा गया है. कुंज से आप समझते हैं और ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए एक बड़ा ऑप्शन है। ये देश भर के आर्टिजन अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लाएंगे और लक्ष्य है कि कम से कम पचलखिया दीदी बने, शिल्पी दीदी जिनकी आमदनी एवरेज 15,000 से 20,000 महीने का हो। और ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया है कि आर्टिजन गांव से ग्लोबल तक ले जाना।
यह परिसर कारीगरों, डिजाइनरों, उद्यमियों और सांस्कृतिक रूप से जुड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए एक जीवंत मंच के रूप में विकसित किया गया है। इस अवसर पर 3 महीने की एक प्रदर्शनी भी शुरू की जाएगी, जिसमें लाइव शिल्प प्रदर्शन, डिजाइन आधारित शोरूम, व्यवस्थित खुदरा प्रदर्शनी और कार्यशाला शामिल है। परिक्रमा के लिए नितिका गुप्ता।
और अब चलते हैं खेल जगत की ओर, मैदान की ओर, और जानते हैं वहां पर क्या हलचल है।
इन जम्मू एंड कश्मीर द 3-day खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज बिगिनिंग टुडे टिल सैटरडे अगस्त 23rd एट द आइकॉनिक डल लेक इन द समर कैपिटल श्रीनगर। द इवेंट इज कंसीव्ड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कल्चर एंड इकोलॉजी। द मैस्कट ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज इंस्पायर्ड बाय द हिमालयन किंगफिशर व्हिच रिफ्लेक्ट्स एडवेंचर एनर्जी एंड प्रोफाउंड कनेक्ट टू द नेचर। More than 500 athletes from 36 states and union territories will be participating in the competitive sports events of rowing, canoeing and kayaking. The Water Sports Festival will also feature demonstration events like water skiing, dragon boat and shikara race. Organized jointly by the Sports Authority of India and the J&K Sports Council, this festival is a direct result of the government's Khelo Bharat policy, aimed at boosting grassroots sports, generating livelihoods and rejuvenating local infrastructure.
और शतरंज की बात कर लेते हैं अभिषेक। शतरंज में सिंगफील्ड कप के तीसरे दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश और वाइल्ड कार्ड धारक अमेरिका के सैमुअल सेवियन के बीच कल बाजी ड्रॉ रही। भारत के आर प्रज्ञानानंद और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुस्तारो के बीच भी बाजी ड्रॉ रही।
एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मार्जिनल गेन्स इन अ रेंज बाउंड ट्रेड टुडे। द सेंसेक्स रोज 143 पॉइंट्स टू क्लोज एट 82,001। सिमिलरली निफ्टी गेन 33 पॉइंट्स टू सेटल एट 25,084। इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट, ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 1% अप एट $67.49 पर बैरल, एंड WTI क्रूड वाज आल्सो ट्रेडिंग ओवर 1% अप एट $63.37 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन।
और अभिषेक, अब श्रोताओं को सुनवाते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती है, और इस क्रम में सबसे पहले हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सगोदरन अय्यप्पन, अ सोशल रिफॉर्मर एंड थिंकर फ्रॉम केरला। अय्यप्पन वॉज बोर्न ऑन 21st of August 1889 इन चेराई एर्नाकुलम। इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ श्री नारायण गुरु, अय्यप्पन बिकेम हिज डिसाइपल, अ स्टॉन्च रैशनलिस्ट। He launched a magazine titled Yuktivad in 1928 to propagate his thoughts of freedom, equality and brotherhood.
What can be called a milestone in Kerala's renaissance movement is the Mishra Bhojanam, in which people of all castes had dinner together. Ayyappan got the prefix Sahodaran to his name after he started a journal titled Sahodaran to help promote harmony in the society. He breathed his last on the 6th of March 1968. The legacy left behind by Sahodaran will remain etched in the history of Kerala's socio-cultural renaissance.
Today is also the birth anniversary of another great son of India, P. Jeevanandam. He was born on 21st of August 1907 in the present-day Kanyakumari district of Tamil Nadu. He was not only a freedom fighter and a socio-political leader, but was also a cultural theoretician, excellent orator, journalist and critic, and above all, a relentless fighter for the deprived. A politician with a clean record in public life who lived and died in utter poverty.
Jeevanandam started his political life as a Gandhian. In 1924, he participated in the Vaikam Satyagraha. He also participated in a protest demanding entry for so-called untouchables into the Suchindram Temple.
Later, during his stay in an ashram in Siruvayal, he had written a letter to Gandhi, disagreeing with some of his methods. When Gandhi came to Madras, he had this letter in his pocket and wanted to meet Jiva. He told Rajaji that he would like to go to the ashram where he resided and meet him. When Gandhi went to Siruvayal ashram and asked for Jiva, the Mahatma was surprised to meet the 25-year-old Jiva. His patriotism took him to the national movement. His revulsion towards caste-based discrimination led him to the self-respect movement.
One of his major influences was the works of the Tamil poet Subramanya Bharathi and also Bharathi's persona and simple lifestyle. He was well-versed in Tamil literature and was a good orator. Jiva translated Bhagat Singh's classic essays into Tamil. Jivanandam was in the forefront of efforts to build a strong labor movement in Tamil Nadu. In the first general elections in post-independence India, Jiva became an MLA and worked for the development of Tamil Nadu.
And it was on this day in 1940 when the nationalist leaders rejected the August offer in a meeting held at Wardha. During the Second World War, Viceroy Linlithgow had declared India to be at war against Germany. Indian leaders were miffed as the British government had pulled India into war without the consent of the people of the country. But the British government was keen on getting Indian support as it feared to lose the battle. Viceroy Linlithgow made a set of proposals called the August Offer. It proposed to accord India's dominion status among other offers. But nationalists rejected the offer and demanded nothing but complete independence.
After the failure of August offer, Mahatma Gandhi urged volunteers to offer individual satyagraha. Vinoba Bhave, the saint of Wardha, was the first to volunteer. Satyagrahis also started the Dilli Chalo movement. This was the decisive moment in the freedom struggle. This was the last leg of struggle for independence when after individual satyagraha in 1942, Gandhiji launched the Quit India movement with the mantra of Do or Die, which eventually brought freedom for the nation.
और अब हम याद कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर को. आज उनकी पुण्यतिथि है. ऐनी आपा के नाम से जाने जाने वाली कुर्रतुल ऐन हैदर प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखिका थी. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था. उन्होंने बहुत कम आयु में लिखना शुरू किया. उन्होंने अपनी पहली कहानी केवल 6 वर्ष की अल्पायु में ही लिखी थी. बी चूहिया उनकी पहली प्रकाशित कहानी थी और वो जब 17-18 वर्ष की थी तब 1945 में उनकी कहानी का संकलन शीशे का घर प्रकाशित हुआ था. इसके अलावा भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात इस्मत चुगताई को भी हम याद कर रहे हैं. आज उनकी जयंती है. उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से उठाया और पुरुष प्रधान समाज में उन मुद्दों को चुटेले और संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम भी उठाया. आलोचकों के अनुसार इस्मत चुगताई ने शहरी जीवन में महिलाओं के मुद्दे पर सरल, प्रभावी और मुहावरेदार भाषा में ठीक उसी प्रकार से लेखन कार्य किया जिस प्रकार से प्रेमचंद ने देहात के पात्रों को बखूबी उतारा. इस्मत ने अफसानों में औरत और अपने अस्तित्व की लड़ाई से जुड़े मुद्दे भी उठाए.
Kenneth Ray Rogers, born Kenneth Donald Rogers, was born on this day in 1938. He was an American singer and songwriter. His fame and career span multiple genres, jazz, folk, pop, rock and country. Let's listen in to his hit track, Green Green Grass of Hope.
From the train, and there to meet me is my mama and papa. And down the road I look and there runs Mary.
और भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर की आज पुण्यतिथि है. और काका कालेलकर देश की मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती थे.
Yes, and John Graham Miller was born on this day in 1952, known professionally as Joe Strummer. And he was the co-founder, lyricist, rhythm guitarist and lead vocalist of the punk rock band Clash, formed in 1976. Let's listen in to his hit track, The Irish Rover.
Aur Bharat Ratan se sammanit prakhyat shehnai vadak Ustad Bismillah Khan ki aaj पुण्यतिथि है। सन 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार और अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को भारत की बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में मुख्य योगदान दिया। वर्ष 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किला पर भारत का तिरंगा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी वहां आजादी का संदेश बांट रही थी। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।